नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टेयर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आणंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माही, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी, तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।